जैसे आप सब लोगों को पता है कि आज का जो टॉपिक है स्वरक्षक से विश्व रक्षक, यज्ञ रक्षक, स्वरक्षक से यज्ञ रक्षक। सो भाई साहब का परिचय, भाई साहब ज्ञान में यंग एज से ही हैं।
पहले इनसे पूछो हिंदी कौन कौन जानते हैं,
हिंदी कितने लोग जानते हैं? सभी जानते हैं,
बेटे
सब जानते हैं, आज भी थोड़े इंग्लिश। सो भाई साहब के परिचय में मैं ये भी कहूंगा कि भाई साहब बाप समान है, यज्ञ रक्षक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। भाई साहब को तो कोई नहीं, ऐसा तो कोई परिचय उनको देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मुरली में जो सार आता है, क्वेश्चन आंसर आता है, भाई साहब ही करते हैं। मुरली डिपार्टमेंट के भी हेड हैं और बहुत कम उम्र में इन्होंने 1972 में अपने आप को समर्पित किया और उन्होंने सिंधी भाषा सीखी और हिंदी में भी टाइप सेटिंग किया। फोटोकॉपी डिपार्टमेंट के विभाग के भी हैं, एग्रीकल्चर और रूरल विंग के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, योगिक खेती आप जानते हैं, तो वो भाई साहब ही करते हैं, वो उन्हों के इनिशिएटर और फाउंडर थे। और भाई साहब के परिचय में उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, ज्ञान सुमन, ज्ञान सरिता, ज्ञान वीणा। भाई साहब ने ट्रैवल भी किया है और सारे ब्राह्मण परिवार को पालना भी देते रहते हैं। मीडिया सर्विस में भी PMTV में अनमोल रतन मोती, उनका टॉक शो होता है भाई साहब का PMTV पर। तो ये परिचय भाई साहब का। सो भाई साहब हम इस तरीके से करेंगे कि आप थोड़ा इनको अनुभव भी कराएंगे यज्ञ रक्षक कैसे बने, आपकी जो पर्सनल यात्रा रही यज्ञ में, आप कैसे बड़े हुए यज्ञ के साथ और कैसे दादी दीदियों के साथ आपने यज्ञ को समझा, यज्ञ को सीखा, कैसे आपको जिम्मेवारी मिली, तो सार में हमको अच्छी तरह से हमको भी यज्ञ रक्षक अपने जैसा बनाएंगे।
ओम शांति। यज्ञ पिता, यज्ञ माता कौन है? साकार में ब्रह्मा बाबा यज्ञ पिता हैं और मातेश्वरी यज्ञ माता सरस्वती माँ। शिव बाबा इस यज्ञ का सेठ है जिसने यज्ञ रचा, लेकिन यज्ञ को जिन्होंने सफल किया वो यज्ञ पिता और यज्ञ माता के, और हम सभी यज्ञवत्स यज्ञ के बच्चे।
पूछना ट्रांसलेशन एवरीबडी इज गेटिंग, इंग्लिश ट्रांसलेशन
मिल रही है?
इंग्लिश ट्रांसलेशन ओके, ट्रांसलेशन इज वर्किंग।
पहले मैं आपको एक भक्ति मार्ग की यज्ञ की बात सुनाता हूँ। शायद विदेश में रहते हो इतना भक्ति के यज्ञ के बारे में न मालूम हो। भारत के अंदर खास जब कोई भी विघ्न आते हैं, जैसे बरसात नहीं पड़ी, सूखा पड़ गया, या बहुत बरसात हो गई, या कोई बीमारी फैल गई, तो उसके लिए कहते यज्ञ करो। और यज्ञ करते हैं तो बड़े बड़े सेठ जो होते हैं पैसे वाले, वो अपने यहाँ यज्ञ रचाते हैं, कुंड बनवाते हैं यज्ञ का, हवन कुंड। और उस यज्ञ में दो ब्राह्मण जो मुख्य होते हैं उनको रखते हैं, और बाकी सब जो यज्ञ के सहयोग देने वाले होते हैं वो सब होते हैं। और उसके अंदर अग्नि प्रज्वलित करते हैं यज्ञ कुंड में, और यज्ञ कुंड के अंदर तिल, जौ, घी, कई प्रकार की सामग्री ब्राह्मणों के हाथ में देते हैं और कहते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो उसमें जब यज्ञ प्रज्वलित होता है तो उसके जो वाइब्रेशन है, जो उसका धुआं निकलता है जिसको हम कहें, घी जलता है और चंदन की लकड़ी होती है, कई ऐसे अच्छे अच्छे पदार्थ होते हैं जिससे वायुमंडल परिवर्तन होता है और जो मनोकामनाएं होती हैं भक्तों की वो पूरी हो जाती हैं। बरसात भी पड़ जाती है, कई विघ्न होते हैं वो हट जाते हैं। तो ये एक भक्ति के अंदर बहुत बड़ी भावना है, कभी भी कुछ भी होगा, अच्छा काम भी होगा तो भी ये गिरचेंगे, कोई गलत मतलब नुकसान वाला होगा तो भी उस नुकसान को खत्म करने के लिए, उस विघ्न को टालने के लिए यज्ञ रचेंगे। तो शिव बाबा ने जब यज्ञ रचा तो उनके आगे क्या लक्ष्य था कि सृष्टि जो पतित हो गई, विकारी हो गई, नरक हो गई, इसको स्वर्ग बनाना है। इसलिए उन्होंने शिव बाबा आए और ब्रह्मा बाबा को निमित्त बना करके इस यज्ञ की स्थापना की और यज्ञ की संभाल के लिए बच्चों को निमित्त बनाया और उसकी बागडोर दी मम्मा के हाथ में। मम्मा बहुत पवित्र कुमारी, बिल्कुल प्योर शुद्ध, तो उनकी जो पवित्रता का बल था, जो उनके अंदर बाबा के प्रति स्नेह और शक्ति थी, योग का बल था, उस पवित्रता और योग के बल से यज्ञ की रक्षा हुई, यज्ञ की संभाल हुई। 14 साल तक यज्ञ में पहले स्थापना के समय 2-3 साल बहुत विघ्न आए। बाबा तो व्यक्ति मनुष्य तन था, शिव बाबा गुप्त, उसको तो कोई जानता ही नहीं था। लोगों ने समझा ये बाबा ही कहीं जादू सीख के आ गया है कलकत्ता में और यहां जिसको दृष्टि देता है वो स्वर्ग में चले जाते हैं, साक्षात्कार होने लगते हैं और वो बिल्कुल पवित्र बनने के लिए, विकारों पर जीत पाने के लिए जिद करता, मुझे विकारों में नहीं जाना, मुझे नॉनवेज नहीं खाना, और एकदम उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो लोगों ने दादा के ऊपर बहुत सितम करना चाहा, माना केस कर दिया, झगड़े करने लगे, बाबा को बहुत सताने लगे, अंदर अंदर परेशान करने लगे। और बाबा ने तो बड़ी युक्ति से, शिव बाबा जानी जाननहार के विघ्न आएंगे, तो उन्होंने बहनों के हाथ में बागडोर दे दी, वंदे मातरम, बहनें संभालेंगी, और उसमें मम्मा को निमित्त बना दिया। तो मम्मा बचपन से ही बहुत शुद्ध सोल थी, बहुत पवित्र शक्तिशाली आत्मा थी। जो भी विघ्न आए, केस हुए, कोर्ट में जाना हुआ, कहीं पर भी कोई भी प्रकार की बातें आई, मम्मा सदा सहनी जैसी, निर्भय, निडर, एक बाल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई, उन्होंने यज्ञ की रक्षा की, यज्ञ को संभाल लिया, बाबा को साइड किया, बाबा को जरूरत नहीं बीच में आने की, ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा तो यज्ञ रक्षक थे ही, लेकिन साकार में सामना कौन करे, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही थी और सामना करने के लिए कोई हथियार की जरूरत नहीं है। भले देवियों के हाथ में हथियार दिखाए हैं, अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं, लेकिन उनके पास योग की, ज्ञान की, पवित्रता की सब प्रकार की शक्तियां थी अस्त्र शस्त्र के रूप में, और मम्मा ने वो सब धारण की हुई थी। उसके कारण 14 साल तो बहुत अच्छी तरह से निर्विघ्न यज्ञ चला। जब भारत में आए और भारत में जब सेवाएं शुरू की तो यहां पर नया ज्ञान, नई धारणाएं, और भारत में जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्कृति है वो तो हिंदू धर्म में चल ही रही थी, तो हिंदू धर्म में जो ज्ञान है वो कई बातों में मिक्स हो गया बीच में, जो दूसरे दूसरे धर्म आए, दूसरी दूसरी बात लोग आए, तो उन्होंने हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं मिक्स कर दिया, देवताओं के ऊपर लगा दिया, जैसे लोग थे वैसे अपने देवताओं को बता दिया कि ऐसे ही देवताएं भी थे, शंकर जी भांग पीते थे, वो धतूरा खाते थे, श्री कृष्ण ने चीर हरण किया, उनकी 108 रानियां थी, ऐसे ऐसे जैसे व्यक्ति होते गए, राजाएं होते गए, और जैसे लोग आए बाहर के, मुगल लोग आए, क्रिश्चियन लोग आए, दूसरे लोगों ने यहाँ राज्य किया, तो हमारी जो मूल संस्कृति थी वो प्राय लोप हो गई। अब वहां पर जब हमारा नया ज्ञान लोगों को मिलने लगा 52-53 के बाद, तो जहां पर सेंटर खुलते थे वहां विघ्न आते थे। ज्ञान में आने वाले तो बहुत नशे में चढ़ जाते, उनको सतयुग का साक्षात्कार होता है, उनको लक्ष्य मिल जाता है कि मैं देवता बनना है, हम देवता थे। लेकिन जो दूसरे नहीं समझ पा रहे थे वो लोग रुकावट डालते थे, विघ्न डालते थे, और जहां पर भी विघ्न आते थे वहां पर बाबा भाइयों को नहीं भेजते थे, क्योंकि भाइयों से तो झगड़ा हो जाता, बहनों को भेज देते थे, और सबसे पहले मम्मा को भेजते थे, मम्मा बच्ची जाओगी? जी बाबा। और मम्मा वहां जाके क्या करती थी? सबसे पहले केस सुनाता हूं, हंगामा, सबसे बड़ा हंगामा जो हुआ यूपी में, उत्तर प्रदेश में, एक हापुड़ शहर है, दिल्ली के पास में है। उस हापुड़ शहर में हमारे कई लोग ऐसे थे जिन्होंने यज्ञ का बहुत विरोध किया। एक माता थी करीब 60 साल के ऊपर उम्र की, वो ज्ञान में निकल आई, और वो ज्ञान में निकली तो लोगों ने ब्रह्मा कुमारी पर कलंक लगा दिया कि इन्होंने एक कुमारी को 60 साल की उम्र वाली को 16 साल की कुमारी कह करके केस कर दिया कि उसको ज्ञान में चला दिया, उसको पवित्र बनने का ज्ञान दिया और उसको भगा के ले गए। उसका नाम था रज्जू माता। अब वो माता तो बड़ी बाबा की बच्ची बनी, बहुत निश्चय बुद्धि बन गई, अनपढ़ थी, लौकिक पढ़ाई नहीं की थी। तो जब हंगामा हुआ बहुत ज्यादा तो कोर्ट में बात गई, मिनिस्ट्री में बात चले गई, क्या हंगामा है, क्यों भाई ब्रह्मा कुमारियों का विरोध हो रहा है, ये बहनों को फंसा ले जाते हैं, बहनों को भगा के ले जाते हैं, घर पिटा देते हैं। थी पवित्रता की बात, लेकिन लोग पवित्रता की बात कैसे कहें, वो विघ्न डालते थे। तो जब उसको हाजिर किया गया माता को, तो देखा जज ने, ये माता तो इतनी बुजुर्ग है, 16 साल की कहां है। तो जज ने उससे प्रश्न किया, तुम ब्रह्मा कुमारी में क्यों जाती है, क्या जरूरत है तुमको जाने की इस उम्र में? तो बोली, बहुत नशे से, बहुत नशा था उसको, बाबा के शब्द उसको इंग्लिश ही आते थे, बाबा कहते हैं ना प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए जाते हैं, तो उसने बोला मैं प्रिंट प्रिंटेड बनने जाती हूं। तो जज हंसने लगा, कहता मैं समझ गया, बेचारी बिल्कुल सीधी है, भोली है, पढ़ी भी नहीं है। तो उस केस को उन्होंने ऐसे ही खत्म कर दिया, कुछ नहीं है, ये सब झूठा है, कलंक है, और वहां से तो शांत हो गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने बहनें जो रहती थी, 5-7 बहनें, 8 उस मकान में, हापुड़ में, तो सभी लोगों ने हंगामा कर दिया कि किसी भी तरह इस संस्था को हमें यहां नहीं रहने देना। घर घेर लिया, बिजली काट दिया, पानी काट दिया। तो पता चला तो कुछ भाई लोग गए तो उनका तो बहुत गालियां भी दिया और उनका ठीक नहीं किया उनके साथ व्यवहार। तो बाबा ने मम्मा को बोला, मच्ची जाएगी? बाबा जाऊंगी। और मम्मा गई तो वो लोग गांव वाले तो और खुश हो गए कि अरे इनकी हेड को ही हटा दो, यहां से भगा दो। तो मम्मा को बहने कहें कुछ करे नहीं, कुछ गालियां नहीं दे, हंगामा नहीं करे। तो वो सेकेंड फ्लोर था, लकड़ी का ही मकान था, लेकिन सेकेंड फ्लोर पर मम्मा की गद्दी बना करके, सफेद चादर बिछा करके योग में बिठा दिया, मम्मा आप यहां बैठ जाओ। और ये जो हंगामा करने वाले बाहर थे तो उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया, कहीं ऊपर ना आ जाए, हंगामा न करें। फिर वो तो बहुत जोश में थे तो उन्होंने क्या किया, दरवाजा तोड़ दिया। और दरवाजा तोड़ के 4-5 जो उसमें हीरो थे, उनके जो लीडर थे, वो मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, ढूंढते ढूंढते भागते चारों तरफ से, हर कमरे में इधर उधर देखते ऊपर पहुंच गए। और मम्मा ध्यान में ऐसे योग में बैठी थी, आंख खुली थी, और बहुत स्नेह से दृष्टि देते कहा, आओ बच्चे, आओ बैठो। और वो जब गए थे हंगामा करते हुए, वो चुपचाप बैठ गए सामने, शांति से, शांति से जब बैठ गए, और काफी समय तक कुछ नहीं, वो बोले ना मम्मा बोले, दृष्टि दे बस। तो नीचे जो हंगामा करने वाले थे, अरे उनको कोई जादू लगा दिया, वो कहां गुम हो गए और हंगामा करने लगे। तो जब बहुत हंगामा हुआ तो जो ऊपर सुन रहे थे कि तो पीछे गालियां दे रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तो ऊपर से चुपचाप उतर करके बाहर आए और आके कहते हैं, ये ब्रह्मा कुमारियां कुछ भी हों, लेकिन इनकी जो मां है वो साक्षात सरस्वती देवी है, दुर्गा है, उसने तो हमारी जबान को ही रोक दिया, बोलने नहीं दिया कुछ, इसलिए यहां से भाग चलो। सब भाग गए वहां से। तो यज्ञ रक्षा कैसे की मम्मा ने? योग बल से, पवित्रता के बल से, निर्भयता के बल से, ऐसे शांति से बैठ के दृष्टि दिया, बाबा की याद की किरणें दिया, वो विघ्न खत्म हो गया सदा के लिए। अभी भी बहुत बढ़िया सेंटर हापुड़ में चलता है। ऐसे ऐसे जहां भी विघ्न आए, पंजाब में आए, चंद्रमय दादी को भेजा बाबा ने, क्योंकि एक ही सेंटर से करीब 15-20 कन्याएं समर्पित हुई और सब अपने घरों से निकल करके सेंटरों पर चली गई। तो पूरे शहर में, पंजाब के अंदर, पंजाबी बहनें निकली एक साथ, झुंड का झुंड कुमारियां, तो हर घर में हंगामा हो गया। ये कैसे ज्ञान है, कहां से आया? चंद्रमय दादी को बाबा कहता सेर नहीं सकती है, जाओ। और चंद्रमय दादी बहुत प्यार से, स्नेह से एक दूसरे को योग का प्रयोग करके निर्विघ्न बना दिया। तो कई बार हम समझते हैं हम यज्ञ रक्षक बन रहे हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, एक पत्र लिखेंगे कि सेंटर पर ये हो रहा है, ये बहन ऐसी है, वो बहन ऐसी है, ये भाई ऐसा है, एक दूसरे की कमियां देखते हैं, कमजोरियां देखते हैं, उनका वर्णन करते हैं और फिर कहते हैं हम तो यज्ञ रक्षक हैं। बाबा कहते ये यज्ञ रक्षक नहीं है, वो तो यज्ञ में विघ्न है। अपने घर की कमी कमजोरी का वर्णन करना, उसका विस्तार करना, वो चारों तरफ से बात को फैला देना, वो यज्ञ रक्षा हुई या यज्ञ में विघ्न हो गया? परिवार है, कोई बातें छोटी मोटी होती हैं, उसको समाना और उसके प्रति योग करना, शुभ भावनाएं रखना, बहुत स्नेह की शक्ति का दान देना जिससे वो विघ्न खत्म हो जाए, उसकी बजाय बातों को लेकर के, बात को बड़ा करके, उसका रूप बदल करके, ईर्ष्या के कारण, अनुमान के कारण, तो कई प्रकार के विघ्न यज्ञ में ब्राह्मणों के द्वारा, बच्चों के द्वारा आते हैं। बाहर वालों के द्वारा कम आते हैं, अभी बाहर वालों के द्वारा नहीं आ रहे हैं। किसके द्वारा आ रहे हैं? बच्चों के द्वारा। इसलिए बाबा ने कहा कि पहले स्वरक्षक बनो, फिर यज्ञ रक्षक करो। स्वरक्षक बनने के लिए क्या करो? जो स्वयं के लिए ईश्वरीय नियम है, मर्यादाएं हैं, उसको दृढ़ता से पालन करो। जितना तुम नियम और मर्यादाओं का पालन करोगे, उतना अपने आप यज्ञ सुरक्षित है, कुछ नहीं बिगड़ना है इसके अंदर। इसकी रक्षा करने वाला तो खुद बैठा है ऊपर, यज्ञ रक्षक वो है। हम समझते हैं हम यज्ञ रक्षक हैं, हम यज्ञ की क्या रक्षा करेंगे, लेकिन हम विघ्न रूप न बने, बस इतना ही यज्ञ रक्षा है। और उसके लिए आवश्यक है बहुत शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ संकल्पों में रहना। अगर एक अपने अंदर चारों तरफ से एक अच्छा सा आभा मंडल बना लो, अभी बैठो आप, एक्सरसाइज करो हमारे साथ साथ, मैं एक आत्मा हूं, इस भ्रकुटी के बीच में निवास करती हूं, बहुत पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, चमकता हुआ हीरा हूं। जैसे हीरे पर कोई लाइट पड़ती है तो हीरे से कई प्रकार की किरणें निकलना शुरू हो जाती हैं, ऐसे ही सुप्रीम लाइट, शिव बाबा की लाइट यहां पर आ रही है और इस हीरे से शांति की, पवित्रता की, प्यार की, शक्तियों की किरणें चारों तरफ से निकल के फैल रही हैं। अगर ये किरणें हम बीच बीच में फैलाते रहे तो वो किरणें इसका रक्षा कवच बन जाएंगी। कोई भी आसुरी शक्तियां कहां कहां से विघ्न आते हैं मैं बताता हूं। एक विघ्न आता है बच्चों के व्यर्थ विकारी संकल्पों के आधार से। जितना विकारी संकल्प कोई करता है, पतित संकल्प उठते हैं, विचार गलत हैं, उसके द्वारा विघ्न आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, इस वायुमंडल में कई आत्माएं हैं जो भटक रही हैं, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं वो अपना रूप दिखा करके प्रवेश करती, उनके द्वारा विघ्न आता है। तीसरा, अगर हम किसी के साथ व्यवहार शुद्ध नहीं करते, बाहर वालों के साथ हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, हमारी वृत्तियों में आसक्तियां हैं, लोभ वृत्ति है, छल कपट है, भ्रष्टाचार है, ज्ञान हमारा अलग है और हमारी जीवन अलग है, तो समाज से, लोगों से विघ्न आते हैं। अब वो विघ्न ना है यज्ञ में, उसके लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहली एक्सरसाइज है, मैं आत्मा इस शरीर में, इस भ्रकुटी के बीच में एक चमकता हुआ हीरा हूं, मैं बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हूं, मेरे ऊपर उस परमात्मा की दिव्य शक्तियां आ रही हैं और वो दिव्य शक्तियां इस वायुमंडल को बहुत शक्तिशाली बना रही, वो एक रक्षा कवच बन रहा है और वो रक्षा कवच इस यज्ञ को सुरक्षित कर रहा है। कोई भी शक्ति इसके अंदर, आसुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। यह है शुद्ध संकल्पों से आभा मंडल क्रिएट करना। केवल यज्ञ नहीं, जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान पर भी कई प्रकार के विघ्न आते हैं। परिवार से आते हैं, समाज से आते हैं, लोगों से आते हैं, आत्माओं से, भटकती हुई आत्माओं से आते हैं, विकारी वायुमंडल से आते हैं। आप अगर योगी आत्माएं बहुत शुद्ध संकल्पों में, पवित्र संकल्पों में एक घंटा भी अच्छा योग करो सुबह शाम, बाबा की दिव्य शक्तियां लो और ऐसे अनुभव करो कि ये दिव्य शक्तियां निकल करके इस घर के चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का घेरा बना दिया, सुरक्षा कवच।
तो आप लोगों को अनुभव हो रहा है भाई साहब जो कह रहे हैं? वेरी गुड।
इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो मैं कह रहा हूं ना ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, थ्योरी नहीं है मेरी। क्योंकि जिस स्थान पर योगी लोग रहते हैं उनके योग के प्रकंपन, उनके पवित्र वाइब्रेशन उस यज्ञ को चार्ज करते हैं, उस स्थान को चार्ज करते हैं। यज्ञ माना जहां हम रहते हैं उस स्थान को चार्ज कर देते हैं। आप देखेंगे, थोड़ा उदाहरण बताता हूं मैं आपको। जहां पर पशु कटते हैं, हिंसा होती है, जैसे नाम तो नहीं लेना चाहता लेकिन आपको बता रहा हूं, कई गलियां होती हैं शहर के बीच में। मैं दिल्ली में एक जगह बार गया तो ट्रैफिक थोड़ी जाम थी तो हम पैदल चले गए। पैदल गए तो वो गलियां कसाईयों की थी, जहां पर गाय, उसको बकरे को, मुर्गियों को मारा जाता है और उनका मांस बनाते बेचते हैं। उसके गली के अंदर इतनी बदबू तो थी ही, लेकिन इतने ऐसे भयानक डरावने वातावरण था जो उस गली को 15-20 मिनट क्रॉस करना मेरे लिए बहुत मुसीबत हो गई। कुछ नहीं कहा किसी ने, कोई डर नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसे लगता था पता नहीं यहां बड़ा खौफनाक वातावरण है, इधर मांस कट रहा है, उधर मांस कट रहा है, उधर ऐसा हो रहा है। उनकी जो आह है, उनके जो दुख की चिल्लाहट है, वो उसके वाइब्रेशन में घुस गई, कण कण में। कभी आप अनुभव करके देखना उस गली में जाकर के, कहीं भी वो आपको वाइब्रेशन का अनुभव हो जाएगा। और कहीं पूजा हो रही है, कहीं घंटी बज रही है, कहीं बहुत अच्छी आरती हो रही है, उस स्थान के वातावरण में आप चले जाओ, वहां शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, ऐसे लगेगा बस बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो स्थान आपको भय नहीं देगा, कोई कह नहीं रहा कोई, लेकिन उस स्थान से जो प्रकंपन निकल रहे हैं पूजा के, स्नेह के, भगवान के प्रति, वो उस वायुमंडल को शक्तिशाली बना रहे हैं। और वो वायुमंडल में जहां नेगेटिविटी है वहां के वायुमंडल को वो दूषित कर रहे हैं, वो भयभीत कर रहे हैं। तो हम योगी आत्माएं जिस स्थान पर रहती हैं, कुछ समय ऐसे बैठ जाओ, आंख बंद करो या आंख खोलो, कैसे भी, जैसे योग ठीक लगे। योग करने की भी जरूरत नहीं, मैं कहता हूं कोई और संकल्प नहीं करो, बस हीरा यहां चमक रहा है, इस शरीर से अलग हूं, शिव बाबा की लाइट डायरेक्ट जैसे यहां पर आ रही है, परम धाम से डायरेक्ट आ रही है, और वो लाइट इस हीरे से कई गुना होकर के चारों तरफ फैल रही है। बहुत प्यार की है, स्नेह की है, शक्ति की है, पवित्रता की है, आनंद की है, सातों गुणों की लहरें चारों तरफ जा रही हैं। आप यहां 2 मिनट बैठ के देखो, बैठ जाओ ऐसे साइलेंस में, ऐसा अभ्यास चाहिए। और ये अभ्यास बीच बीच में अगर हम कर लेते हैं तो इससे जो हमें अपनी स्वरक्षा हो रही है, क्योंकि हमारी नेगेटिविटी खत्म हो रही है, आत्मा पावन बन रही है, इंद्रियां शीतल हो रही हैं, शांत हो रही हैं, हमारी रक्षा अपने आप हो रही है, हम कहीं न करने नहीं जा रहे हैं, और हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षा हो रही है, आत्माओं की रक्षा हो रही है जो भटक रही हैं, दुखी हैं, उनको भी शक्ति मिल रही है, उनको भी शांति मिल रही है। बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे पहले स्वरक्षक बने, बहुत पवित्र विचारों में रमण करना सीखें, अपने संकल्पों को कंट्रोल करने का अभ्यास करो। बस संकल्प ही एक इतनी बड़ी शक्ति है जो बहुत व्यर्थ चल रही है, इधर उधर क्या क्या सोचते हैं, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसकी जो बहुत हलचल है अंदर, हम कहते हैं कई बार ट्रैफिक बाहर कम होती है, अंदर ज्यादा होती है। कभी ट्रैफिक में फंसे होंगे ना, कभी कभी फंसे हैं ट्रैफिक में, या ये हीटर थोड़ा बंद करना, इधर के दोनों हीटर गर्म कर रहे हैं। मैं अभी कल ही यूपी में था, उत्तर प्रदेश में, और वहां की लखनऊ की ट्रैफिक इतनी खतरनाक थी। हमारे विदेश वाले बैठे हैं इसलिए अपने भारत की मैं इंसल्ट नहीं करता, लेकिन हमारे भारत में कहते भगवान ही इसको चलाता है, उसी पर बैलगाड़ी, उसी पर घोड़ा गाड़ी, उसी पर हाथ गाड़ी, उसी पर रिक्शा, उसी पर साइकिल वाला, और उसी पर पोंपों करने वाली गाड़ियां, और सामान उठाने वाले ट्रेलर ट्राली। तो अब मुझे पहुंचना टाइम पर था, प्रोग्राम शुरू होने वाला था, मैं ट्रैफिक के बीच में एकदम फंस गया। जिस गली से जा रहा था सामने किसी ने बोल दिया कि खड्डा है, आपकी गाड़ी वहां से नहीं निकलेगी। वो चलाने वाला था, मैंने कहा शांत रहना, स्थिति नहीं बिगाड़ना, हम पहुंच जाएंगे, बाबा पहुंचाएगा। अब ऐसे समय पर वो बाहर की ट्रैफिक तो ठीक है, लेकिन अंदर जो संकल्प चलना शुरू हो जाता है ना, बार बार उतरना, बार बार गाड़ी पर देखना, इधर देखना, उधर देखना, किधर मोड़े, किधर निकले, कैसे निकले। वो बाहर की ट्रैफिक तो चलो है, अंदर जो बीपी बढ़ता है, टेंशन चलता है, संकल्प चलते हैं। मैं तो इसको योगदान देता रहा, भाई बड़ा शांत रहना, शीतल रहना, बाबा अपने आप पहुंच जाएगा, जब पहुंचना होगा पहुंच जाएंगे। उधर से लोग आ रहे हैं, कहां फंसा दिया गाड़ी, हमारा ट्रैफिक जाम कर दिया, पीछे करो, आगे करो। 15-20 मिनट ऐसे ही साइलेंस में हमने खड़े हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, बाबा ठीक कर देगा। धीरे धीरे ट्रैफिक अपने इधर उधर मुड़ करके निकल गई, फिर उसको बैक करवाया, गाड़ी बैक हुई, फिर बैक करके उसको मोड़ करके ले गए, 1 घंटा लेट हो गए। ऐसे समय पर मन की ट्रैफिक कंट्रोल में आ जाए, उसकी बहुत जरूरत है, और इसके लिए हमको बहुत अच्छा अभ्यास की जरूरत है। ब्रेक, बाबा कहता ब्रेक, कंट्रोलिंग पावर। जब कंट्रोलिंग पावर है तब रूलिंग पावर है। रूल ऐसे हम नहीं कर सकते दूसरों पर, कंट्रोल करना पड़ेगा पहले। तो अपने संकल्पों पर कंट्रोल करें, बह रहे हैं, चल रहे हैं, क्यों चल रहे हो भाई, क्या चाहिए, चल रहे हैं, सोच रहे हैं। कभी सोचा है कि ये क्यों सोच रहा हूं मैं? अगर इसको सोच लिया कि मैं क्यों सोच रहा हूं, तो आप स्वशासक बन जाएंगे, और जो स्वशासक बन जाता है वो प्रशासक बन सकता है। स्वशासक बनना ही स्वरक्षक बनना है। संगम ऊपर हम कहते हम चाहते नहीं हैं, बोल दिया, सुन लिया, देख लिया, हो गया, परवश स्थिति, और उससे जो कर्म होता है, उससे जो विघ्न आते हैं, वो यज्ञ में बहुत बड़े विघ्न है, परवश स्थिति से विघ्न आते हैं। तो आप सभी इस पर विचार करना। हमारे राजेश भाई बैठा है प्रश्न पूछने के लिए,
मैं
खुद ही बोलता जा रहा हूँ।
मैंने प्रश्न डेफिनेटली बहुत तैयार किए हैं, लेकिन मैं भी आपके ब्रह्म बाबा जैसे आते थे, मैं भी एकदम मदोश हो गया उसी सुनते सुनते। तो भाई साहब, होता ऐसा है कि हमारी जो क्वालिटी है, हम जिस प्रकार के बनावटी है, आपने तो यज्ञ में काफी दादियों की पालना ली, वाइब्रेशन लिए ब्रह्मा बाबा के साथ और शिव बाबा के साथ भी, अव्यक्त बाप दादा के साथ, आपने कितना उनका आपको अंदर समर्थता आ गई। लेकिन हमारी क्वालिटी में ये नहीं है कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूं और अपना माइंड शिफ्ट कर सकूं। हम बड़े फिकल या इम्पल्सिव प्रकार के क्वालिटी के हैं। तो ऐसे क्वालिटी को हम कैसे मतलब शो रक्षक अपनी रक्षा कैसे करें?
ऐसा है कि किसी से भेंट करने की जरूरत नहीं है, हर एक का पार्ट अलग अलग है। जब जागे तभी सवेरा, जब बाबा हमें मिला, बाबा की पालना में कोई अंतर नहीं है। साकार में भी जो बाबा के सामने थे, वो भी बाबा को कई बार नहीं पहचान पाए। अव्यक्त बाबा का पार्ट चला, अव्यक्त बाबा के पार्ट में भी बाबा के पार्ट को नहीं पहचान पाए। लेकिन जिन्होंने केवल दो मुख्य बातों को शुरू से अंत तक पालन किया, मूल धारणा, पहले दिन पढ़ाया गया पवित्र बनो, योगी बनो, इस सब्जेक्ट को जिन्होंने गहराई से समझ करके अपने जीवन में धारण कर लिया, इसमें हमें पक्का रहना है, मजबूत रहना है। और एक बल, एक भरोसा, एक बाबा, बाबा में संपूर्ण निश्चय। अगर बाबा में संपूर्ण निश्चय है ना, तो उस निश्चय का बल बहुत बड़ा है, उससे विजयी बन जाते हैं। संगम युग पर इस समय परमात्मा का जो कार्य है, जो कोविड के बाद आए या 2017 के बाद बच्चे निकले हैं, उनको लगता होगा हमने दादियों को नहीं देखा, हमने गुलजार दादी को भी नहीं देखा, बाबा को नहीं देखा। लेकिन मुझे यहां तक अनुभव होता है कि बाबा का जो अव्यक्ति रूप का पार्ट है, वो जब गुलजार दादी के तन में लास्ट में 3-4 साल आते थे, उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है इस समय। क्योंकि उस समय कई बच्चे निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि बन जाते थे, बाबा ऐसे कैसे बोलता है, क्योंकि दादी की हेल्थ को देख नहीं रहे थे। दादी की हेल्थ बहुत नाजुक होती गई 2014 के बाद, 13 के बाद ही। कभी बाबा 5 मिनट आए और दादी की आवाज में बोल गए, दादी अव्यक्त मना सूक्ष्मतन में नहीं जा पाई, बाबा की प्रवेशता हो गई। दादी से हमने कुछ पूछा था ये प्रश्न कि पहले तो बाबा जब आते थे आप ट्रांस में जाती थी, फिर आप कहती थी मुझे कुछ पता नहीं है, मैं टाइप करके मुरली दादी के हाथ में देता था तो पढ़ती थी, अभी क्या होता है? आप ट्रांस में तो जाती नहीं है, कई बार ऐसे बैठी है आंख थोड़ी बंद की, अब बाबा आ गए। तो कहती थी बाबा मुझे ट्रांस में नहीं बुलाता है, क्योंकि ट्रांस में जाना माना शरीर से मरना, और शरीर कमजोर है, अगर मैं एक बार चली गई ट्रांस में तो हो सकता है शरीर में फिर से ना पाऊं, इसलिए बाबा मुझे बुलाता ही नहीं। और जब मैं बाबा की याद में ऐसे बैठती हूं तो बाबा अपने आप आ जाता है, और आ जाता है तो मैं तो सो ही नहीं हूं, ट्रांस में जाती थी तो मैं सो जाती थी, अब मैं सो ही नहीं हूं तो जो बाबा आपको बोलते हैं, आपसे बात करते हो, मैं भी सुनती हूं, और कभी कभी बाबा की बात के बीच में मैं भी बोल देती हूं। जैसे ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों मिक्स थे, कभी शिव बाबा बोल जाता है, कभी ब्रह्मा बाबा बोलता। लास्ट दिनों में आप लोगों ने नोट किया या नहीं, क्योंकि मैं तो टाइप करता था साथ साथ, और मुझे लगता था अरे बाबा तो बोल ही नहीं रहे, तो दादी बोल रही है। गुड़गांव का अनुभव सुनाने लगी एक दिन बाबा के बीच में, ये क्या है? तो मैं दादी के पास गया, दादी ये तो लगता है आप बोली हैं, तो बाबा नहीं बोला, बाबा ऐसे कैसे बोलेगा, तो बोलिए मैंने बोला क्योंकि मैं सोई नहीं। कभी शिव बाबा बोल रहा है, ब्रह्मा बाबा, वो तो बाप दादा में तो अंतर पता नहीं चलेगा, तो दोनों समान है। लेकिन गुलजार दादी की आत्मा भी बीच बीच में बोल रही है और उसमें कई लोग संशय बुद्धि हो रहे हैं, बाबा ने वो पाठ रोक दिया, चलो गुलजार दादी का शरीर कैसा भी है। लेकिन उसके बाद जो मैं अनुभव कर रहा हूं इस समय, कि बाबा अपने बच्चों को उससे अच्छी पालना दे रहे हैं, संशय नहीं उठता। कोई को ये फिक्र नहीं होती फीता मिलेगा, दृष्टि मिलेगी, वहां जाना है या नहीं जाना, शांत बैठो, जिस स्थान पर बैठ जाओ एकदम उसी लगन में मगन हो जाओ, बाबा आपकी आवाज अव्यक्त वतन में भी सुनेगा और जो प्रश्न मन में होंगे उसका उत्तर वीडियो की मुरली में भी मिल जाएगा। ये लगेगा नहीं, ये 20 साल 15 साल पहले हमने सुनी थी, कई बातों की इतने विचित्र अनुभव बाबा करा रहा है इस समय बच्चों को, जो बाबा के पार्ट को हम ये नहीं कह सकते बाबा का पार्ट पूरा हो गया। जब तक स्थापना पूरी नहीं हुई तब तक बाबा कैसे चला जाएगा, पाठ कैसे पूरा हो जाएगा। विधि परिवर्तन हुई है और होंगी, तो मुझे तो यह अनुभव होता है कि बाबा अपने बच्चों को अंत तक साथ दे रहा है, देगा। जब आवाज गूंजेगी आ गया प्रत्यक्षता होगी तब परिवर्तन होगा, फिर परिवर्तन हो जाए, फिर बाबा साथ में ले जाएगा सबको, तब तक वतन से पालना देता रहेगा। तो मैं तो 69 के बाद मधुबन आया, 69 तक बाबा ने मेरी पालना पत्रों से की। मेरी उम्र 4 साल की थी, मेरे पिताजी माताजी सब ज्ञान में आ गए। 60 में मम्मा 35 दादियों को लेकर मेरे गांव में आई, 3 दिन वहां रही, खूब सेवाएं की। लेकिन मेरे आगे कुछ विघ्न था क्योंकि मैं अपने परिवार में इकलौता बेटा था, 3 के बीच में अकेला था। तो पिताजी के बड़े भाई बिल्कुल एंटी हो गए कि यही चला जाएगा तो कुलदीपक कौन बनेगा, इसलिए इसको ज्ञान में नहीं चलने देना, भले आप सब जाओ ज्ञान में। उन्होंने विघ्न डाला और मुझे मधुबन में आने नहीं दिया। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हो गए तो ऐसे ही स्कूल की छुट्टी थी और मैंने दादा को अपने पिता के बड़े भाई को बोला कि 1 महीना की छुट्टी है, मैं घूम के आऊं माउंट आबू। बोला चले जाओ। बस घूमने आया था मैं 71 में 1 महीने के लिए, यही रह गया। 71 में आया, दादी ने कहा नहीं अभी छोटे हो पढ़ो और पिताजी की चिट्ठी चाहिए, ऐसे नहीं रह सकते हो, 15 साल की उम्र में मैं नहीं रखूंगी, 18 साल के होने तब आना। बहुत सारी बातें उन्होंने मेरे आगे रख दी। मैं वापस गया, उस समय ही यहाँ पर भारत में एक युद्ध चला हिंदुस्तान पाकिस्तान का 71 में, और वो युद्ध ने मुझे पक्का करा दिया विनाश हो रहा है अभी, अब मुझे नहीं रहना यहाँ। बस 71 लास्ट दिसंबर में युद्ध हुआ, मैंने कैसे भी करके हाई स्कूल का पेपर दिया और मैं अप्रैल में चिट्ठी लिया पिताजी की, छुट्टी लिया और मधुबन आ गया 72 अप्रैल। तब से लेकर के बाबा के घर में सेवा दे रहा हूं। यज्ञ का विस्तार कैसे हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा, कुछ नहीं था, छोटा सा यज्ञ पांडव भवन हिस्ट्री हाल। अगर 100 लोग यहां आते थे तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी पेपर होता था, कहां सोएंगे, सवेरे 4 बजे उनको गर्म पानी कमरों में देना है, ठंडी बहुत पड़ती थी, सबको गर्म पानी पहुंचाना, कहीं नल नहीं है गर्म के पानी के, कहीं कोई प्रबंध नहीं है, कोई बिजली के साधन नहीं है, कोई हीटिंग नहीं है, हीटर नहीं है, लेकिन लकड़ी पर रोटी बनाते थे, धोबी घाट हाथों से ऐसे करते थे। बहुत छोटा सा यज्ञ लेकिन उसमें भी बड़ा मौज का अनुभव करते थे। नौकर नहीं थे घर में हमारे, हम ही सब करते थे। 25-30 भाई समर्पित थे, 10-12 माताएं थी बूढ़ी बूढ़ी, यंग कुत बाबा सेंटर पर भेज देते थे। जो माताएं नहीं जा सकती थी वो मधुबन में बाबा के साथ यहाँ यज्ञ में रहते थे। दीदी दादी की पालना थी, लेकिन दीदी के साथ जो दादी का एक उमंग था, प्रकाशमय दादी का, बाबा ने जो कुछ साकार में कहा है वो मुझे करके दिखाना है। बाबा ने कहा अबू तक क्यों लगेगी, बहुत बच्चे आएंगे, बड़े बड़े मकान बनाने पड़ेंगे, बहुत कुछ जो बाबा ने साकार में कहा था, विदेश में संस्था जाएगी, सब धर्म वाले ज्ञान सुनेंगे। बस दोनों दीदी दादी ने मिलके शुरू कर दिया काम 71 से ही। एक साल तो बीत गया 70, लेकिन 71 में पहले बार विदेश भेजा, और 71 से आज तक हर साल एक नई बिल्डिंग बनी। सबसे पहले 12 लोगों के रहने की व्यवस्था हुई पांडव भवन के पास, योग भवन बना 12 लोगों के लिए। योग भवन में पहला शिविर 73 में राजयोग शिविर रखा गया, पहला शिविर 73। उसमें 12 प्रोफेसर्स आए, उनको इतनी अच्छी पालना दी ज्ञान योग के साथ साथ सब प्रकार की, 12 ही 12 ज्ञान में चल गए। अभी भी उनके बच्चे हैं, नेहा बहन है अहमदाबाद में, एक गायत्री बहन है कुलाबा में, ये सब उनके बच्चे हैं, सारे बच्चियां हैं। बहुत सारे सेंटर्स बने उनसे। उसके बाद विज्ञान भवन बना, जो बनता गया वो छोटा होता गया। उसके बाद एक जमीन जो हमारी ओम शांति भवन की थी, एक भाई ने लिया, ऐसे ही पत्थर था, ले करके दादी को कहता दादी ये ले लो, यहाँ पर शेर आते हैं, वो चीता आते हैं, भालू आते हैं, लोग डरते हैं, ये ले लो। दादी कौन बनाएगा, बन जाएगा दादी बन जाएगा। ओम शांति भवन बन गया। 83 के बाद यज्ञ के अंदर टोटल परिवर्तन आया। 83 तक हम सब स्थूल साधनों पर ही निर्भर थे, कोई साइंस के साधन नहीं थे। स्टीम सिस्टम आ गई, धोबी घाट की मशीनें लग गई, जो हमारी लकड़ी की चूल्हे की बॉयलर की बातें चलती थी पानी गर्म करने को, रनिंग वाटर हो गया सब। 83 ओम शांति भवन बना, और उसके बाद में परिवर्तन आया। अब यज्ञ विस्तार होता गया, अब ओम शांति भवन बन गया, हाल तो बना दिया, 3000 का रहेंगे कहाँ। अब दादी को बार बार संकल्प आए हमको कम से कम 5000 का एकोमोडेशन चाहिए। ढूंढते रहे जमीन, कहीं नहीं मिली थी। एक दिन बाबा ने ऐसे कान में बोला, अब एक बाबा ने दादी को ऐसे सवेरे 6 बजे विदाई लेते समय ऐसे, इधर आओ इधर आओ, ये जो दूध वाले हैं ना इनसे बात करना, दूध वालों से बात करना, उनके पास जमीन है। बाबा सुबह 6 बजे कह के गए हैं, और दूध वाला दूध लेकर के 9 बजे आके दूध में डिपार्टमेंट बोलता है, भाई जी जो भाई संभालते थे, अगर आपको कोई जमीन चाहिए तो बताना, हमारे पास एक चरागाह की जमीन पड़ी है यहाँ इस ज्ञान सरोवर की। दादी को भाई ने सुनाया जाकर के, दादी ये दूध वाले आए हैं। हाँ भी सवेरे बाबा भी कह रहे थे दूध वालों से बात करना, कहाँ है जमीन देख के आओ। अब यहाँ रास्ता तो था नहीं, पगडंडी थी, जब देखने आए तो जंगल था। बोला दादी यहाँ तो जंगल है क्या करेंगे, अरे बाबा कह रहा है ले लो, ले लिया। ज्ञान सरोवर निर्माण किया, बाबा यहाँ आए उद्घाटन करने, अब एक बाबा को बुलाया इस हाल में, बाबा को बाहर निकाला झंडे पर, तो बाबा ने देखा जितने अंदर बैठे उससे डबल बाहर खड़े हैं। बोले ये क्या बना दिया, कहाँ 5000 रहेंगे। बाबा चुपचाप चले गए मिल करके बच्चों से, लेकिन बाबा ने फिर भाइयों को टच किया और शांतिवन का निर्माण कराया। एक के बाद एक निर्माण हुए हैं, और उसके पीछे बाबा एकदम अव्यक्त बाबा का पूरा गुप्त पार्ट रहा है। कौन देखता है, कौन करा रहा है, साकार में तो दीदी दादी थी, लेकिन एकदम गाइड करने वाला, ऊपर से कंट्रोलिंग करने वाला बैठा ऊपर, जैसे जहाज चलता है ना, एरोप्लेन चलता है, पता नहीं पायलट को कौन गाइड कर रहा है, कोई गाइड तो कर रहा है ना उसको, अगर टावर से कनेक्शन कट जाता है तो पता नहीं कहाँ पायलट जहाज जाएगा। टावर के साथ उसका कनेक्शन होता है, जिस स्थान पर उतरना है वहां उसको पता चलता है, वो गाइड कर रहा है इतना नीचे करो इतना ऊपर करो ऐसे चलो यहां आओ। हमको कौन गाइड कर रहा है? ऐसे कनेक्शन जुड़ता है कि नहीं? पूरे यज्ञ को गाइड करने वाला ऊपर बैठा है और हम समझते हम संभाल रहे हैं, हम कहां संभालेंगे? ये निश्चय चाहिए तब इस यज्ञ का बेड़ा पार होगा। नहीं तो कई वो कई ऐसे आते हैं बुद्धि वाले, समझदार, पैसे वाले होते हैं, बुद्धि वाले होते हैं, मैं यज्ञ रक्षक हूं। अरे तुम यज्ञ क्या रक्षा करेगा? वो कंट्रोलर ऊपर बैठा है, वो कर रहा है रक्षा उसकी। लेकिन हम नियम पर चले, मर्यादाओं पर चले, अपना चिंतन श्रेष्ठ रखें, सबके प्रति शुभ भावना रखें, तो हम स्वरक्षक और यज्ञ रक्षक बन जाएंगे। अभी प्रश्न पूछो।
मेरे पास कोई प्रश्न ही नहीं है।
पूछते ही नहीं है
तो अभी हाँ अभी नहीं, रियली मेरा मुंह बंद हो गया है। सच बताऊं तो मैं खुद ही अनुभव में एकदम मगन हो गया हूँ राधा बाबा के पास। लेकिन आपको मैं मेरे मन में एक किया आता है कि बाबा ने आपको पर्सनली किस प्रकार से, क्योंकि बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स इधर हैं और हमारे पास ऑनलाइन ऑडियंस भी है, तो बहुत लोग आपको सुन रहे हैं, तो आप कुछ ऐसी प्रेरणादायक बात, आपने तो बहुत प्रेरणा दी है ऑलरेडी, पूरा एक प्रकार से समर्थ भी बना दिया, लेकिन इन एडिशन टू दैट आप बाबा ने आपको पर्सनली ऐसे जैसे आप आमने सामने मिले उस प्रकार का कोई ऐसा अनुभव आपका?
क्या है कि मैं बाबा के सामने जब ओम शांति भवन बन गया और कंप्यूटर जब आ गए, कंप्यूटर सीखा, तो मैं सामने बैठने लगा। वैसे बाबा जब ओम शांति भवन में आते थे तो हमारे पास टाइपराइटर था और टाइपराइटर की आवाज बहुत होती है, ठक 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 ठक, तो हम टाइपराइटर तो बाबा के सामने नहीं,
पुराने वाला स्टाइल वाला,
हाँ, स्टाइल वाला टाइप, तो हम क्या करते थे अपने ऑफिस में ही हेडफोन लगाते थे कान में और टाइप कर लेते, डायरेक्ट बाबा उधर बोल रहे थे, मैं ऑफिस में मुंडी टाइप कर लेता था पूरी रात, जितना बार बाबा बैठे मैं पूरी रात टाइप कर लेता, हाथ से नहीं लिखता था पहले, स्टेंसिल काट देता था मुरली की, उसी समय छप जाती थी। लेकिन जब कंप्यूटर आ गया और जब मैं टाइप कर रहा हूं और जब मैं बाबा को बिल्कुल मिस ही नहीं करना चाहता हूं, तो मैं बाबा के सामने गया ही नहीं, मुरली देने बाद में गया, जब बाबा विदाई लेने लगे तो मुरली देने गया कि बाबा आपकी मुरली ये है, ये हेडिंग है, इसकी हेडिंग मैंने ये बनाई है, मुरली की हेडिंग बनाते ना ऊपर की, तो बाबा बड़ा खुश होता था। तो एक दिन बाबा ने अचानक ऐसे मेरे को खड़ा किया, अच्छा रुको, टोली देते थे तो हमेशा, तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें तो बुद्धि का वरदान मिल गया है, दिव्य बुद्धि का वरदान मिल गया। तो मैंने कहा बाबा ये तो बहुत बड़ा वरदान है, दिव्य बुद्धि का वरदान माना क्या? और फिर बाबा ने आगे कह दिया, बुद्धि जो सोचेगी वो कर लेगी, जो कार्य होगा वो कर लेगी। तो जब ये वरदान बाबा ने दिया तो मुझे संकल्प थोड़ा चला, बाबा ने कहा बच्चा ये वरदान क्यों मिला? तो मैं कहा पता नहीं क्यों मिला। कहा तुमने अपनी बुद्धि को कहीं पर भी व्यर्थ में नहीं लगाया, केवल अपनी उन्नति और ब्राह्मण परिवार की उन्नति का ही सोचा है, इसलिए इस बुद्धि को वरदान मिलता गया और मिलते मिलते बुद्धि दिव्य बन गई और अभी जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन अटेंशन और भी बढ़ाना, अटेंशन रखना, कहीं भी किसी के संग दोष में नहीं, हमको कहीं भी आप देखेंगे नहीं मैं किसी के साथ बैठा हुआ हूं, न किसी से लेना न किसी से बात, क्या हो रहा है यज्ञ में मुझे कुछ पता नहीं। बाबा ने खूब बिजी किया है, अपनी पढ़ाई है, अपना चिंतन है, अपना होमवर्क है, और पूरे ब्राह्मण परिवार में पहले दादी कहती थी राजू भाई भेजो, ये नहीं गया ये नहीं गया ये नहीं गया, फिर दादी जानकी जी थी कभी कभी बुला लेती थी, क्या भेजा, इतने कहते क्या भेजा आपने, अभी तो कोई नहीं कहता क्या भेजा या नहीं भेजा तुम जान, अभी बाबा ही कहता मुझे ऊपर से, और जो कुछ कहता है कर लेता हूं। पूरे 14 लाख ब्राह्मणों की पालना होनी चाहिए, साकार में कहने वाले कोई नहीं रहे, लेकिन अगर बाबा ने दादियों ने सिखाया है, उम्मीद रखी है, तो हम उनके काम में कभी भी रुकावट ना आए। जो कुछ सिखाया, जनवरी मास का होमवर्क जाना चाहिए, 18 जनवरी की मुरली जानी चाहिए, शिवरात्रि आएगी उसके लिए प्रतिज्ञाएं जानी चाहिए, उसका मैटर जाना चाहिए, बहुत सारे कार्य हैं। अभी 18 जनवरी के लिए बुक, मैं 20 तारीख को जाने वाला हूं, मेरे को याद ही नहीं रहा मुझे 18 तारीख की अभी किताब बनानी। 18 तारीख को गिफ्ट मिलती है सबको, फोन आता नीचे से, आपने 18 तारीख किताब बना दिया, अब मैं 20 को जाने वाला हूं। 19 को पूछा जा रहा किताब बनी, हमें बांटनी है इस ग्रुप में। मैं बाबा को बोला बाबा क्या करना है, बस उठा, यही पांडुबन बैठा था उस समय में, ऑफिस में गया, हमने कहा दरवाजा बंद करो, बाबा और मैं कंप्यूटर ऑन किया, करीब 2.5 घंटा मैंने कंटिन्यू सर्च किया और एक ही टॉपिक सर्च करके मैंने 110 पेज की किताब बना दी। किताब बन गई, उसका नाम दिया परमात्म प्रत्यक्षता का आधार, अव्यक्त महावाक्यों से परमात्म प्रत्यक्षता की विधि। किताब छप गई होगी, अभी मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि मैं कल ही वापस आया हूं, छप गई होगी, मिल भी गई होगी, नहीं तो मेरे पास कंप्लेन आती। बनाने वाला बाबा, कराने वाला वो, सिर्फ हम अपनी बुद्धि को बहुत साफ स्वच्छ रखें, इधर उधर की बातों में डिस्टर्ब ना होने दे, बस इतना ध्यान रखो, सब कुछ करा लेगा। मैं यही सोचता हूं, जब उसका यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, उसको पालना करनी है और उसने मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया है, तो मैं अच्छा राइट इंस्ट्रूमेंट बन के रहूं, बस मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सोचने वाला वो बैठा है, मैं उसका उंगली चलाने वाला राइट हैंड हूं, बहुत अच्छा काम करा रहा है बाबा। आपको लगता है कि होमवर्क नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है। कल 1 तारीख आएगी, 1 तारीख से आपको नया होमवर्क मिल जाएगा।
तो राजू भाई, आपके जीवन में कभी, जैसे हमारे जीवन में तो हम बहुत सारे संशय आते हैं, आप कभी भी जीवन में कहीं पर भी इतनी चेंजेस आई यज्ञ में, और आपको कभी भी संशय नहीं आया?
ऐसा छोड़ो, प्रश्न ही नहीं आया मेरे को, कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि जब बाबा में संपूर्ण निश्चय है ना, यज्ञ किसका है, ये हिलोरे तो आएंगी, सागर है, लहरें तो आएंगी, लेकिन जिसका यज्ञ है, यज्ञ पिता जो हमारा है, शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा है, उनका यज्ञ है, उनके हम सब रक्षक, उनके हम बच्चे हैं, हम विघ्न रूप न बने बस। बाकी यज्ञ में कोई भी बात आएगी, रुकेगी नहीं, ठीक हो जाए। और मैं शुरू से देखता हूं, एक विघ्न थोड़ी आया है। और दादियों को देखता था मैं, कितनी अच्छा लडो लेख रस, कभी नहीं कहा होगा ये विघ्न आया है, योग करो योग करो योग करो। बातें आई, सरकार के द्वारा आई, प्रकृति के द्वारा आई, पैसे की आई, धन की आई, इनकम टैक्स की, बहुत सारी बातें आई, कोई चिंता नहीं, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, बेफिक्र बादशाह। मैं जानकी दादी के पास कभी कभी कोई पत्र लेके जाता था, जो टेंशन वाले पत्र होते थे, पत्र वहीं पढ़ता पूरे सेंटर्स के, दादी को सुनाता, दादी डोंट थिंक, दादी डोंट थिंक, कैसे डोंट थिंक, कुछ तो चलेगा ना संकल्प, कहते डोंट थिंक, तुम सब भावना रखो, सब ठीक हो जाएगा, बाबा बैठे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मतलब इतना बाबा में फेत, कोई भी नीचे ऊपर बात हो गई, कभी भी उन्होंने अपने संकल्प नहीं चलाए, सब भावना रखो, उसके लिए योग करो, उसको ज्ञान की अच्छी पॉइंट भेज दो, उसको मुरली की एक अच्छी बात बता दो, लिख दो, बाकी कुछ नहीं, उसकी बातों को छेड़ना नहीं, पेपर है, खत्म हो जाएगा, पेपर सदाकाल का नहीं होता। ये दादियों की स्थिति रही है।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बल सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो,
अजू भाई, आपने हमारे को बहुत खुराक दिया है।
इन लोगों के कोई प्रश्न हो तो?
हाँ, इनका हाँ वही इन्हीं के प्रश्न। लेकिन आपने हमें जो खुराक दिया है, जो उमंग उत्साह भरा है, और जिस प्रकार से आपने ये पूरा अनुभव शेयर किया, भरपूर हो गए। लेकिन एक प्रश्न मुझे आपसे पूछना है, आपके ब्राह्मण लाइफ में एक भी चैलेंज नहीं आया जिससे आपको लगा?
चैलेंज नहीं है।
अच्छा, तो
चैलेंज तो
मतलब पर्सनल एफर्ट
पर? पर्सनल चैलेंज आई, क्योंकि यज्ञ के अंदर कोई आगे बढ़ता है तो ईर्ष्या द्वेष भी होता है, उसकी भी चैलेंज आई। कई प्रकार के कलंक भी लगे, छोटे मोटे, लौकिक में परिवार की तरफ से बहुत चैलेंज आई, क्योंकि अकलौता बेटा था, माँ को लोगों ने कुछ करके उनको खत्म कर दिया, तो उसकी तरफ से भी पेपर आए। फिर चलते चलते अचानक बीमारी ऐसी आई जो मेरे पूरा शरीर खराब हो गया, हाथ पैर सब सुन्न हो गए। मतलब कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो सबके सामने आता, मेरे सामने सब पेपर आए। लेकिन बाबा ने ऐसे पार किया, उसके पीछे दादियों की दुआओं का हाथ है, बस उसके बल से मैं पार हो गया। मुझे लगता ही नहीं मेरे पेपर आए। पेपर तो आएंगे ना, शरीर पुराने हैं, संस्कार पुराने हैं, संबंध पुराने हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ खटपट तो होगा ना, नहीं होगा। लेकिन उन पेपर की परवाह नहीं की, क्योंकि बहुत निश्चय। कोई मेरे को कहेगा ये होगा, मैं बाबा बैठा है, दादियां बैठी हैं, हमको क्या करना है। अभी मैं 9 दिन का टूर पर था, 9 दिन का, और एक तरफ गया तो एकदम गर्म केरला में गया, और उसी समय हमको बहुत अर्जेंट जाना पड़ा यूपी, एकदम ठंडा, जहां हीटर चल रहा है वहां एसी चल रहे, पंखे चल रहे। 9 दिन का टूर। अब एक भाई ने मेरे को कहा, एक दिन आप थोड़ा रेस्ट कर लो, मसाज करवा लो, केरला में बहुत अच्छे मसाज होते हैं। मसाज तो कर दिया हीटर में, उसमें स्टीम में बिठा दिया, और दूसरे दिन 5-7 प्रोग्राम रख दिए, किसानों का रख दिया, क्रिसमस का रख दिया, ये कर दिया, और मैं खड़े खड़े जो भाषण किया और सम्मान किया किसानों का, मेरे पैर एकदम बेकार हो गए, मैं उठ ही नहीं सकता, एक पैर नीचे नहीं रख सकता, और मुझे यूपी जाना है। मैंने कहा बाबा क्या करना है। बाबा ये एक बल एक भरोसा है, मधुबन में जाना, इनका क्लास का बार बार मैसेज आ रहा है, शांतिवन में अभी मेरा 5:30 क्लास है। बाबा आप ठीक करोगे कि नहीं, क्या होगा। बस बाबा के हाथ में बैठ गया। सुबह 6 बजे अपने भाइयों को, 6:30 निकलना, प्लेन पकड़ना है। मैं सुबह से फोन किया अपने भाई को जिसने हमको वहां पर बुलाया था, ऐसे हुआ है, मैं तो पांव भी नीचे नहीं रख सकता, इतना दर्द है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। उसने जोर से मुझे पहला पावरफुल इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद गोलियां दे दी कि 3-4 घंटे के बाद दिखा लेना। और पूरी व्हील चेयर वहां से लेकर के किया, 2 फ्लाइट चेंज करनी थी, कन्नूर से चला बेंगलोर चेंज किया, बेंगलोर से चला लखनऊ पहुंचा, पूरा टाइम व्हील चेयर पर ले गए प्यार से इंडिगो, अकेला ही था मैं, दूसरा भाई मेरे साथ नहीं। वहां से पहुंचा, वहां बाबा की याद में था, गोलियां खाई थी, इंग्लिश गोलियां खाई, पेट जाम हो गया, कब्जी हो गई। और प्रोग्राम पर प्रोग्राम, कहीं सिल्वर जुबली है, कहीं वार्षिक उत्सव है, कहीं डायमंड जुबली है, 2 दिन के अंदर कम से कम 5 प्रोग्राम थे। और यहां नहीं, एक जगह नहीं है, इधर है, 2 घंटे के रास्ते के बाद दूसरा है, 3 घंटे ट्रेवलिंग भी करनी है। लेकिन दूसरे दिन धीरे धीरे ठीक हुआ, चलने फिरने लगा, कब्जी भी दूर हुई। और जब तक मधुबन में आया, जो जैसे गया था वैसे आ गया, जैसे गया था वैसे आ गया। हमने बाबा को भी सेवा करानी, अभी मैं 3 तारीख को फिर जा रहा हूँ बंगाल, अब 4 दिन के लिए आया हूँ आपसे मिल लिए। तो पेपर किसके आगे नहीं आते, चैलेंजेज हैं, लेकिन कभी ये नहीं है क्या होगा कैसे हो? बाबा बैठा है, दादियों की दुआएं हैं, छत्र छाया के नीचे हूँ, कुछ नहीं होगा, जब तक सेवा करानी कराएगा, और जिस दिन सुला देगा उस दिन सो जाएंगे, उसमें क्या, 70 साल तो हो गए आयु के, चला रहा है बाबा।
वाह 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 वाह। तो आप लोगों को उमंग आता है कि मैं भी इनकी तरह, आपको इंस्पिरेशन आता है मन में, ऐसा कुछ उमंग आता है, क्योंकि अभी तो नया साल है, न्यू ईयर्स है ना,
करना है सो कर लो, कल किसने देखा, जो शक्ति है, मैं कहता हूँ कुछ नहीं लाओ, दूसरे से मांगो नहीं, तन की शक्ति है तन सेवा में लगाओ, मन की शक्ति है मन मना भाव, बाबा को भी याद करो अच्छी तरह से, अच्छी स्थिति के वाइब्रेशन फैलाओ, धन है तो सेवा में लगा दो, सफल हो जाए कल किसने देखा, सफल हो जाएगा तो कम से कम कुछ तो जमा हो जाएगा, विनाश हो गया तो चला जाएगा। इसलिए जो कुछ है, तन मन धन, कोई विशेषता, कोई विशेष कला है, उसको बाबा के काम में सफल कर लो, बस सफल करो, सफलता मिल जाएगी।
कल की मुरली थी ना ये,
नए साल पर ध्यान देना, ठीक है।
थैंक यू राजू भाई, आपने तो हमें भरपूर कर दिया, और नए साल के लिए इतनी प्रेरणा, इतना उमंग उत्साह भर दिया। आई एम श्योर आप लोगों को भी आता है ना उमंग, नहीं आप लोग कुछ बोलते नहीं हो। नहीं, लिसनिंग इज वन थिंग, ठीक है आपको सुनना है। हाँ
कहीं भी बैठो, पावरफुल डायरेक्ट कनेक्शन, सबका डायरेक्ट कनेक्शन, इनडायरेक्ट नहीं है।
तो स्वरक्षक से
यज्ञ
रक्षक, ये नए साल के लिए ये उमंग उत्साह अपने में भरना। मेरे को तो बहुत उमंग आया, मैं तो इधर बैठा हूं तो उमंग आता ही, आप लोगों को देखता हूं, प्लस भाई साहब की एक एक बात, तो ऐसे लगता है बाबा स्वयं करण करावन हार है और कराते हैं। भाई साहब बहुत बहुत दिल से, तय दिल से थैंक यू वेरी वेरी मच,
आप लोगों ने बुलाया, चांस दिया, बहुत अच्छा, थैंक यू।